नवा अध्याय श्लोक क्रमांक 3 अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, अनुवाद, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणं अच्युतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने धरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनका दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि से उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा उसके पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनके ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि के में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्ण। भगवद गीता का 9वां अध्याय जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, राज विद्या राज गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। ये राज विद्या है और ये राज गुह्य है। क्यों राज विद्या है? जनरली साधारणतः जो कोई भी तकलीफ उठा रहा है इस दुनिया में, तकलीफ इसलिए उठाता है जब वो किसी नियम का उल्लंघन करता है उसे सजा मिलती है। तो सजा इसलिए मिलती है, तकलीफ होती है क्योंकि सजा मिली, सजा इसलिए मिली क्योंकि नियम का उल्लंघन हुआ, और नियम का उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि अज्ञान में था वो। तो अज्ञान ही सारे तकलीफों का कारण है, दुखों का कारण है। और अगर ज्ञान है तो उस तकलीफ से आदमी बच सकता है। जैसे किसी को ज्ञान नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी में शॉक लगता है, अज्ञान है, तो प्लग पॉइंट में उंगली डालेगा वो, अच्छा लगता है, छेद है, देखे क्या है उसमें। बच्चे करते हैं ऐसा, और एक ऐसा झटका लगता है बाद में, और उसे जिसको ज्ञान है उसे मालूम है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक नियम है कि जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको झटका लगेगा, ये नियम है, उस नियम को तोड़ोगे तो आप तकलीफ उठाओगे, दुख होगा। तो हर एक ज्ञान की प्राप्ति इसलिए है कि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अज्ञान नहीं रहेगा, और अज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण हमें दुख हो। पर हम देखते हैं कि भौतिक ज्ञान, कोई बीए एमए पीएचडी बीएससी एमएससी जो भी है, बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किए हैं, पर सबसे बड़ी समस्या जीवन का, सबसे बड़ी समस्या है कि कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, और ये सब का कारण तो जन्म है, जन्म के बाद ही बुढ़ापा आती है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम, यह संसार है, संसार चक्र में जो है। हालांकि हम बहुत पढ़े लिखे हो, भौतिक ज्ञान प्राप्त किए हैं, पर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं निकल सकते। तो ये चक्कर जो है, ये वही व्यक्ति निकल जाता है जिसको ये राज विद्या प्राप्त है। इसीलिए 9वां अध्याय को राज विद्या बताया गया है। कि इस अध्याय को जो अच्छी तरह से समझ गया वो इस भव सागर को पार कर सकता है। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। इस ज्ञान को, नवे अध्याय के इस ज्ञान को, भगवत गीता का ज्ञान को एक एक नाव की तुलना दी गई है। प्लव, प्लव मतलब नाव। इस नाव पर जो बैठा है, सवार है, वो व्यक्ति इस भव सागर को आसानी से पार कर जाता है। जिसको ये विद्या उपलब्ध है, राज विद्या, वो सारी समस्याओं से हमेशा के लिए हल प्राप्त कर सकता है। दूसरी विद्याओं से कुछ समस्याओं के लिए, कुछ समय के लिए हल मिलता है, पर राज विद्या सारी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसीलिए राज विद्या है। पर समस्या है राजगुह्यम, बहुत गुह्य है ये। आप कहेंगे गुह्य क्या है जी, 2 रुपया देंगे तो गीता प्रेस का गोरखपुर से आपको मिल जाएगा, छोटा भगवत गीता जेब में रख के घूम सकते हैं। और अगर थोड़ा बुद्धिमान आदमी है तो 1 महीने के अंदर 700 श्लोक आर पार उल्टा सीधा कैसे भी उच्चारण कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो फिर कौन सी गुह्य बात है, कौन सी बड़ी बात है ये? गुह्य ये है, यहां यह बताया गया है, 3रे श्लोक में बताया गया है क्यों ये गुह्य है। इदम तुति गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सुनने की योग्यता है, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है। क्या योग्यता है? प्रवक्षामि, मैं कह रहा हूं क्योंकि अनसूयवे, तुम मुझसे असूया नहीं करते, तुम भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम भगवान की शरण जाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी मूल स्थिति को पहचान चुके हो और अपने आप को निस्सहाय समझकर पूर्ण शक्तिशाली भगवान की शरण जाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए जिज्ञासा कर रहे हो। और जिज्ञासा करने के बाद जिस ज्ञान को तुमने सुना उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो तुम, इसीलिए तुम ये ज्ञान समझ सकते हो। असूयवे, अनसूयवे, हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए भगवान से विमुख होकर भगवान बनने की चेष्टा। कोई कहेगा नहीं जी, हम भगवान भगवान थोड़ी बनना चाहते हैं। हां, भगवान का लेबल शायद आप नहीं डालेंगे, पर जिस हद तक भोग करने की प्रवृत्ति है, जिस हद तक प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति है, जिस हद तक सेवा लेने की प्रवृत्ति है, तब तक छोटे मोटे भगवान है हम भी। तो उस हद तक ये ज्ञान को प्राप्त करना मुश्किल है। असूया को दूर करना, ईर्ष्या को दूर करना बहुत दूर की बात है, पर कम से कम हमें विश्वास होना चाहिए कि हम नगण्य हैं, तुच्छ हैं, और इस भौतिक संसार से परे भगवान हैं, परम शक्तिशाली हैं, अचिंत्य शक्ति है उनकी, वो एक व्यक्ति हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो चाह रहे हैं कि हम उनके शरण आए। जब इस बात की किसी व्यक्ति में श्रद्धा हो जाती है, वहां उसकी भक्ति की शुरुआत होती है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हुए 9 स्तर बताए, नवदा भक्ति नहीं, 9 स्तर बताए भक्ति में प्रगति करने का। और उसका सबसे पहला स्तर क्या है? आदौ श्रद्धा। भक्ति अगर करना है तो एक गुण जो है अनिवार्य है, थोड़ी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के आदमी परम श्रेष्ठ योग, भक्ति योग को प्राप्त कर ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है ये श्रद्धा क्या है, किस चीज पे श्रद्धा। वो भी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास, और वो विश्वास कैसा विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास, भावुकता नहीं, सब कर रहे हैं अच्छा, इतने लोग 300 लोग आए हैं होना चाहिए, जो भी कर रहे हैं हम भी करेंगे बस, क्यों सब कर रहे हैं, और सब नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये नहीं, पूर्ण रूप से ज्ञान के आधार पर ये विश्वास। और क्या विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, ये निश्चय पे आना, ये निष्कर्ष पे आना, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण की अगर भक्ति कोई कर रहा है तो सारे हमारे कार्य परिपूर्ण हुए, उसकी परिपूर्णता को हमने प्राप्त किया। और अगर सब कुछ किया, सारे नियम का पालन किए, रीति रिवाज किए, पूजा पाठ किए, सब किए, पर अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर श्रमैव हि केवलम्, वो ऐसा श्रम है, ऐसे धान्य को आप पीट रहे हो जिसके अंदर से, मतलब ऐसे जो धान्य के ऊपर के छिलके को मार रहे हो जिसमें से धान्य निकल गया है, उसको जितना भी मारो कुछ नहीं है मिलने वाला। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमैव हि केवलम्। तो हमारा पूजा पाठ, हमारा सब कुछ, हमारा कर्म, हमारे कार्यकलाप जितने भी हम कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं भौतिक संसार में, परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने शरीर के प्रति, सब कुछ निभा रहे हैं, पर वो श्रमैव हि केवलम्। क्यों, क्योंकि सबसे उसका टेस्ट क्या है, अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। सारे वर्णाश्रम विभाग बताया गया है, बहुत सारे रीति रिवाज नियम बताए गए हैं, विधि निषेध, ये करो, ये नहीं करो, शास्त्र का मतलब विधि निषेध, पर ये आप सब कर रहे हो, पर इसका उद्देश्य क्या है, समसिद्धि, इसकी परिपूर्णता क्या है, हरितोषणम, भगवान प्रसन्न हुए क्या, आपके कार्यकलापों से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। और हमें कैसा पता चले महाराज भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं सकते। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, भगवान के प्रतिनिधि जो हैं उनसे पूछना है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, तृप्त किया जाए, और उनके आज्ञा के अनुसार चलना, उनको प्रसन्न किया तो हम समझ जाएंगे उनके प्रतिनिधि प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य इति कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको वो विश्वास है, यस्य देवे पराभक्ति, भगवान में भक्ति है, यथा देवे तथा गुरौ, ऐसे सद्गुरु के ऊपर भी पूर्ण विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को सारे शास्त्रों का मर्म प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों का मर्म क्या है, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, अंततः सारे वेदों से हे अर्जुन मुझे जानना है, मेरी शरण जाना है। नारद मुनि कहते हैं कैसा, यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्त, कितना सरल उदाहरण, कोई भी अंगूठा छाप व्यक्ति इसे समझ सकता है कि बिना भगवान को श्रद्धापूर्वक सेवा करके प्रसन्न किए हमारे सारे कार्य, पूरे जीवन भर के कार्य और श्रमयेव ही केवलम, केवल श्रम हो गया। कैसे? दो उदाहरण दिए हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति दस्कंद भुजोपशाखा। जैसे बहुत बड़ा 200 फुट लंबा पेड़ है, बड़े बड़े डाल हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, अब उसको दष्ट पुष्ट रखना है तो पानी डालना है, धड़ में पानी डाले, डाली में पानी डाले, पत्ते में डाले, फूल में डाले, फल में डाले, फिर भी पेड़ सूखने वाला है। पर वो सब में मत डालो, एक बकेट पानी जड़ में डाल दो बस। यथा तरोर मूल निषेचनेन, अगर जड़ में पानी गया तो अपने आप धड़ डाली पत्ता फूल फल सब में पानी पहुंच जाएगा, दष्ट पुष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से अपने आप धड़ डाली पत्ता फूल फल में पहुंच जाता है, जिस प्रकार पेट में खाना डालने से सारे अंगों को शक्ति अपने आप मिल जाती है, इसी तरह से सारे सृष्टि का जड़ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, हे अर्जुन, सब कुछ मुझसे आ रहा है, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सारे सृष्टि का जड़ हूं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण अंततः भगवान श्री कृष्ण है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं कह रहे, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता का ये वाक्य है, भगवान खुद कह रहे हैं। हम लोग उस स्थान पर गए थे दक्षिण भारत की यात्रा के पश्चात, आप में से कई लोग दक्षिण भारत यात्रा आए थे, और हम लोग रामेश्वरम मदुरई तक आए, और हमारे बहुत सारे गृहस्थ भक्त लोग चले गए, पर 3 दिन का एक्स्ट्रा हमारा ब्रह्मचारियों का भी यात्रा था तो उसमें हम लोग उस स्थान पर गए जहां श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता का पहला जो कॉपी है उपलब्ध हुआ। वो कन्याकुमारी से 150 किलोमीटर दूर, दो घंटे का रास्ता है। इस जगह का नाम है तिरुवट्टा, ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है तिरुवट्टा। वहां एक बहुत ही सुंदर विग्रह है आदिकेशव मंदिर। तो हम लोग गए थे वहां 500 साल पहले, ठीक 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आए थे, और उस समय वहां के बड़े बड़े पंडितों से उनकी मुलाकात हुई, जो अर्चक थे श्री आदिकेशव जी के, उनके साथ बातचीत हुई, और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान के सामने ये लोग सुंदर स्तुति करते हैं, और उन्हें पता किया कौन सी स्तुति है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्तुति है। ब्रह्मा जी ने 100 अध्यायों में भगवान की स्तुति की थी, उस अध्याय का सारा संपूर्ण अध्याय लुप्त हो गया है, सिर्फ 5वां अध्याय मिला है, और वो 5वां अध्याय जो है वो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय जो हम पढ़ते हैं, वो ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा सुने, ये अर्चक लोग हर रोज भगवान के सामने गाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु देखे, पूरे हमारे सारे कृष्ण भावनामृत का निचोड़ इस श्लोक में है, पूरे शास्त्र का निचोड़। भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति स्थिति क्या है, और सारे विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, शिवजी, दुर्गा देवी, गणेश, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा सब की स्थिति और भगवान की स्थिति के संपर्क में एग्जैक्ट पोजीशन एज इट इज पूर्ण रूप से इस अध्याय में वर्णन है। तो वहां हम गए थे, वहां का लीला भी बहुत सुंदर है, किस प्रकार से भगवान वहां प्रकट हुए। जो श्रद्धालु भक्त है वो सुनेगा तो उसको विश्वास बढ़ेगा। तो वहां के जो अर्चक थे उनसे हमने पूछा कि विग्रह की कैसे कैसे भगवान यहां अवतरित हुए, कैसे आए, क्या लीला है उनका। तो वो बोल रहे थे कि बहुत समय की पहले की बात है, एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ कर रहे तो भगवान को कुछ लीला करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने सरस्वती को कहा, कुछ आज्ञा दिया और सरस्वती जी आई और ब्रह्मा जी के जिह्वा के ऊपर बैठ गई। तो ब्रह्मा जी यज्ञ में आहुति डाल रहे थे तो उन्होंने मंत्र उच्चारण कर रहे थे और सरस्वती जी के बैठने पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया मंत्र उच्चारण में, और उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और चार दिशाएं होते हैं यज्ञ कुंड के, उसके अलग दिशाओं में उस आहुति को डाल दी, और जैसे वो डाले, कहा जाता है कि एक दो खतरनाक राक्षस उत्पन्न हो गए, बहुत ही शक्तिशाली, जिनका नाम था केश और केशी, और ये दोनों राक्षस उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को बोले, बहुत अच्छा हमको पैदा तो कर दिए, अभी कुछ वरदान दो हमें। ब्रह्मा जी लाचार से बोले, मांगो। बोले, हम अमर रहना चाहते हैं, हमें मृत्यु। ये जो असुर प्रवृत्ति के लोगों का सबसे पहला डिमांड यही होता है। आप रावण को देखिए, हिरण्यकशिपु को, मतलब जो भगवान ने नियम बनाया ना उसका उल्टा मैं करूंगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, नहीं मैं पुनः नहीं आना चाहता हूं, इधर ही रहना चाहता हूं। दुखालयम अशाश्वतम, नहीं मैं सुखालयम शाश्वतम बनाना चाहता हूं इसको। जो भी कहेंगे नहीं, पहले नहीं, उसका उल्टा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तू कहेगा मैं सुना तो मैं भगवान नहीं हूं ना, भगवान मतलब स्वराट ईश्वर परमा। तो तुरंत सबसे पहले पैदा होते ही बुद्धि कैसे आ गई उनको कि मरना नहीं चाहिए। और पहली बार मैंने सुना, पता नहीं कैसे ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जी हमेशा नहीं रह सकता, तुमको क्या दूंगा वरना। पर उस समय पता नहीं सरस्वती फिर भी जीवा के ऊपर थी कि क्या, उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो केश और केशी को जब पता लगा कि अब हमें पूरे सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, तो फिर क्या कहना उनका, पहले ही शक्तिशाली और उसके ऊपर ये वरदान। फिर वो तहलका मचाने लगे, इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जाते वो हर जगह जाते और ललकारते, कौन है यहां माई का लाल, कोई है? जिसका भी मतलब खून खोलता बताए क्या करे बेचारे, लड़े तो भी तकलीफ, नहीं लड़े तो भी तकलीफ। अंत में एक व्यक्ति ने कहा उनको, मूर्खों तुम्हें इतना अहंकार है, अगर सही में तुम किसी से लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तुम्हारा टक्कर जो है एक सही व्यक्ति से होना चाहिए। बोले हां, तू है क्या? बोले मैं नहीं हूं। तुझे सही टक्कर मिलेगा, तू परशुराम क्षेत्र में जा, परशुराम क्षेत्र में ढूंढ और वहां तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरे टक्कर में लड़ाई करेगा और तुझे हराएगा। बोले कहां है वो परशुराम क्षेत्र? बताया, एड्रेस दिया उनको, परशुराम क्षेत्र इधर है, ये आप देखेंगे केरला उडुपी ये सब परशुराम क्षेत्र है। परशुराम जी ने जब दान दे दिया, सब कुछ दान दे दिया, तो कुछ जगह ही नहीं रहा उनके लिए, तो उन्होंने महेंद्र पर्वत या कौन सा एक पर्वत पर खड़े हुए और अपना फरसा जो है समुद्र में फेंका, ये संकल्प करके कि ये जहां तक ये परशु जो है जाके गिरेगा समुद्र वहां तक पीछे हट जाएगा और वो जगह जो है परशुराम क्षेत्र वहां वो निवास करेंगे। तो परशुराम जी कहा जाता है फेंके इतना दूर कि उड़पी केरला सब रिक्लेमेशन हो गया। तो परशुराम क्षेत्र में केरला भी आ जाता है, तिरुवट्टार वहां का ही जगह है। तो इस तरह से ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था और उसे नहीं मालूम कहां है कौन है। तो पूरे परशुराम क्षेत्र में गया और जिसको भी जो भी मिलता था सबको तकलीफ देने लग गए दोनों केश और केशी। एक दिन एक आश्रम में घुस गए और वहां एक ऋषि बैठे हुए थे, उस ऋषि का नाम था मातुलेय। वो बेचारे बैठे हुए थे और आराम से ध्यान लगाए थे और ये लोग चिल्लाने लगे। तो लोग आए उनके शिष्य चिल्लाने लगे, गुरुदेव देखो कोई बहुत ही बड़ा संकट हम पर आ गया है, ये दो पता नहीं क्या जीव है कैसे जीव है आ गए, तहलका मचा रहे। तो मातुलेय ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और जब वो भगवान की स्तुति की तो कहते हैं कि उस समय भगवान नारायण महाविष्णु वहां प्रकट हुए। ये आदिकेशव मंदिर जो है वहां से और थोड़ा दूर त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम, जहां अनंत पद्मनाभ का विग्रह है। आदिकेशव भी 22 फुट लंबे हैं, बहुत विशाल विग्रह है। एक्चुअली उनको देख नहीं सकते, उनको तीन दरवाजा है, वो इंस्टॉलमेंट में देखना पड़ता है उनको। एक दरवाजा से उनका मुखारविंद दिखता है, एक से उनका वक्षस्थल, तीसरे में उनका चरण कमल। एक जगह से पूरा नहीं देख सकते, तीन छोटे 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 मतलब ऐसे से द्वार है उसमें से देखना पड़ता है और वो आरती का लैंप लगाते तो थोड़ा दिखता है, नजर आता है। बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेटे हुए महाविष्णु लेटे हुए हैं, निद्रा में है और जस्ट आंख खोले हुए हैं, पर वो महाविष्णु है क्योंकि अभी तक सृष्टि उत्पन्न नहीं हुआ है। और अनंत पद्मनाभ जो है वो सृष्टि हो गया है, उनके नाभि से पद्मनाभ, नाभि से कमल निकली हुई है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं विराजमान। तो ये आदिकेशव, इसीलिए उनका नाम है आदिकेशव, सृष्टि के आदि का स्वरूप है उनका। तो वहां प्रकट हुए तो मातुले ऋषि प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये दोनों को संभालो, आप केश केशी को संभालो। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है। और अब केश केशी सब ध्वंस करते हुए जब आए, जैसे भगवान के सामने आए, भगवान ने अपना स्वरूप इतना बड़ा किया, इतना विशाल किया कि दोनों बेहोश होकर गिर गए, देखते ही बेहोश होकर गिर गए। और जैसे बेहोश होकर गिरे, भगवान ने अपने नागपाश से दोनों को कस के बांध दिया। बांधने के बाद नीचे सुलाया, सुलाने के बाद अनंत शेष को बोले आसन लगाओ मेरा। अनंत शेष जी अपना आसन लगाए और भगवान लेट गए, बस अभी भी लेटे हुए उस समय से। दोनों नीचे हैं अभी भी, बांध के उनको भीतर रख दिया, आसन लगा दिया ऊपर। तो जब ये बात उनकी दो पत्नियों को पता चला, केश और केशी की पत्नियां, उनका नाम था परली और गोदा, ये दो उनकी स्त्रियां थी पत्नियां। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने अपना इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने दो बड़े नदी का रूप धारण किया और बोले हम लोग इतने प्रवाह से जाएंगे कि वो नाग जो अनंत शेष है उसको, विष्णु को, सबको एकदम जैसे बाढ़ में बहा देते हैं ऐसे बहा देंगे और हमारे पति को मुक्त कर देंगे। तो पूरे जबरदस्त प्रवाह के साथ दो नदियां आने लगी तिरुवट्टार की ओर, और जैसे नदियां दोनों पूरे प्रवाह के साथ, पूरे रफ्तार के साथ आ रही थी, भगवान ने सिर्फ मुस्कुराया, अपना स्वरूप दिखाया और मुस्कुराने लगे। ये दोनों नदियां, एक्चुअली राक्षसियां थी, वो जब दोनों ने भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन किया तो उनका सारा क्रोध दूर हो गया, पूरे शांत हो गए और वो नदी एकदम प्रेम से बहते हुए आए। दोनों साथ में आ रहे थे, फिर तिरुवटार जहां भगवान लेटे हुए हैं उसके दोनों बगल से ऐसा गए और फिर से मिल गए। एक्चुअली तमिल या मलयालम नहीं मालूम, ये तिरुवट्टा की जगह का मतलब है वट्टा, वट्टा वट्टम मतलब सर्कल वृत्त। तो नदी साथ में आई फिर दो भाग में बट के मंदिर के चारों ओर ये नदी बह रही है, एक तरफ परली और एक तरफ गोदा, दोनों बह के मतलब चारों ओर नदियां बह रही है ऐसे, ये दोनों नदियां बहकर फिर से जुड़ती है। मंदिर के चार द्वार हैं, अब कहीं से भी बाहर जाएंगे तो वहां नदी मिलेगी, चारों ओर स्नान कर सकते हैं। तो वहां वो दोनों ऐसे आ गए, तो वट्ट वट्टम मतलब सर्कल वृत्त, और अरी अन्य कुछ बताया, पता नहीं समझ में भूल गया मैं, मतलब नदी। सो तिरुवट्टार मतलब है, तिरु मतलब एक संबोधित करना, एक रेस्पेक्ट, तिरुमंगई आलवार, तिरु तिरु जैसा हम किसी को कहते हैं श्री सो एंड सो, इस तरह से तिरु। तिरुवट्टार का मतलब है उस पवित्र स्थान जहां दो नदियां मिलकर भगवान को पूरे केंद्र से केंद्र रखकर दोनों ओर से मिल रही हैं। और भगवान ने उन दोनों को वरदान दिया कि हर साल मैं आप में आकर स्नान करूंगा। आज भी आदिकेशव का जो उत्सव मूर्ति है बहुत सुंदर है, भूदेवी श्रीदेवी दोनों पक्ष, दोनों पक्ष में है और उनका अभिषेक होता है, बहुत सुंदर हमने देखा। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अच्छा दर्शन मिल गया, 2000 लोग में थोड़ा तकलीफ था, हम लोग 200 लोग थे, 200 लोग के 200 लोग पूरे घुस गए, सब लोग आज खड़े हो गए, सबको दर्शन मिला, अच्छा हो गया। तो अभी भी उस साल में एक बार भगवान को ले जाते हैं और उन नदियों में, दोनों नदियों में जहां मिलते हैं वहां उसको स्नान कराते हैं। और कहा जाता वहां एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि मेरे दादाजी के समय, मतलब बोले थे कम से कम आज से 90 साल पहले, बोले हर रोज आदिकेशव के सामने, भगवान आदिकेशव के सामने ब्रह्म संहिता पढ़ा जाता था। अभी नहीं है, अभी नहीं पढ़ते हैं, पर 90 साल पहले तक, मतलब 500 साल से लेकर अभी 90 साल पहले तक हर रोज ये पढ़ा जाता था ब्रह्म संहिता। तो इस तरह से उस ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कहते हुए कहते हैं, करते हुए कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, लोगों को श्रद्धा नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है, लोग समझते हैं भगवान निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म है। वो ही बताया गया है, ब्रह्म है क्या, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म, ये भगवान के शरीर के अंग की क्रांति है। सूर्य जिस प्रकार एक जगह स्थित है पर सूर्य के प्रकाश जो है सर्वव्यापी है, इस तरह से भगवान गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, गोलोक में स्थित है पर उनकी अंग की क्रांति में ये पूरे ब्रह्मांड जो परव्योम और भौतिक संसार भी उसमें स्थित है। तो भगवान अंततः, भगवान भी एक व्यक्ति हैं, आप और हम जैसे हम भी एक व्यक्ति हैं। नित्यो नित्यानाम, हम नित्य, आत्मा नित्य है, शरीर नित्य ना हो पर आत्मा नित्य है। नित्यो नित्यानाम, बहुत सारे नित्य हैं और एक नित्य है। चेतनस चेतनानाम, बहुत सारे चेतनामय जीव हैं और भगवान भी एक जीव है, पर दोनों में अंतर क्या है? वो भी नित्य है, वो भी चेतनापूर्ण है, सच्चिदानंद है, पर अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये अंतर है। हम जो हैं तुच्छ हैं, नगण्य हैं, इतने हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी खुद की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, हम लोग करने की शक्ति नहीं है। इच्छाएं तो बहुत हैं हमारी, पर पूर्ण करने की शक्ति नहीं है, और पूर्ण करने के लिए भी किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। पर भगवान जो हैं, न केवल अपनी इच्छा को वो पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकते हैं, पर जितने सारे अनंत कोटि जीव हैं भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति उनके अंदर है। अंगानी अस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनमें और एक अंतर है, हमारी आंखें देख सकती हैं, हम आंखों से सुन नहीं सकते, हम आंखों से सूंघ नहीं सकते, हम आंखों से बोल नहीं सकते। हां बोल सकते हैं, अलग तरीके से बोल सकते हैं, आंखों से खा नहीं सकते, आंखों से चल नहीं सकते, पर भगवान में और हम में ये अंतर है। भगवान जो है कोई भी इंद्रियों से दूसरे सारे इंद्रियों का काम हो सकता है उनका, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। ही इज एब्सोल्यूट, आंखों से वो खा सकते हैं, देख तो सकते ही हैं, सूंघ सकते हैं, जीवों को सृष्टि जो बोलते हैं महातत्व के गर्भ में गर्भाधान भी कर सकते हैं। स ऐक्षत स सृजत, बहुत ही शक्तिशाली उनके सारी इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियों का काम एक इंद्रिय कर सकती है। अब ये हमारी बुद्धि से परे है, ये सब करते हुए भी नहीं करते हो, एक जगह बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, पर सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सारी सृष्टि का मेंटेनेंस हो रहा है, जब चाहे सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन है? पलंग पे लेटे रहता है बस, और ऐसा नहीं कि चिंतित है, टेलीफोन लेके हां बोलो 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 बड़बड़ाते रहते हैं। मैंने देखा बंबई में पहली बार, ये पता नहीं मोबाइल का, पहले तो कम से कम ऐसा कान में पकड़ते थे, फिर बाद में एक दिन देखा आदमी चल रहा, हां बोल, ऐसा। मैंने बोला क्या हो गया इसको, अभी ठीक ठाक, वो बड़बड़ाते जा रहा है पागल जैसे, हां हंस रहा है फिर बोल रहा है हां हां, उधर दोनों आंख खाली है, इधर उधर देख रहा है। मैं बोला अच्छा तो देखने में तो अच्छा दिखता है, क्या हो गया उसको? बाद में पता चला कान में एक है, यहां से वायर है, इधर उधर गया, हां वो अपने हंस रहा है कुछ भी सही नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो पागलपन हो गई, सब लोग अपने अपने बोल रहे, बस सब अपने बैठे हुए, किसी को बगल वाले से कुछ लेना देना नहीं, सब अपने में बड़बड़ा रहे बस ट्रेन में बैठ के। उसे तो एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए, न केवल बिजनेस टाइमिंग, 24 घंटा बड़बड़ाते रहते वो लोग, टेंशन में रहते हैं, इतना चिंता क्या हो गया, उधर ले इधर ले। पर भगवान कोई टेंशन नहीं, लेटे हुए हैं बस, आराम से लेटे हुए हैं, सृष्टि कर रहे हैं। और सृष्टि क्या, एक छोटा कंपनी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करना चलेगा और ध्वंस करना चलेगा, एक बम लगा लिया सो दिया उड़ जाएगा अपने आप। पर मेंटेनेंस, किसी चीज को मेंटेन करना, इसीलिए साक्षात विष्णु ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। सृष्टि करना ठीक है, किसी को शक्ति दे तो सृष्टि कर देगा, किसी को नष्ट करना वो भी थोड़ा थोड़ा एम्पावरमेंट दे दिया, बुद्धि दे दिया तो हो जाएगा, ठीक से नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हो जाएगा। पर किसी चीज को मेंटेन करना, क्योंकि पूरा संसार का नियम है, सब कुछ टूटते जाता है, सब कुछ नष्ट होते जाता है, एक बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए कितना तकलीफ, एक शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या तकलीफ, हर रोज खाना खिलाना पड़ता है, हर रोज कसरत करना पड़ता है, नहीं तो मेंटेनेंस नहीं होगा, हर रोज सांस लेना, हर क्षण सांस लेना पड़ता है, पानी पीते रहना पड़ता है, नहीं तो मेंटेन नहीं होगा, मर जाएगा शरीर। किसी चीज को मेंटेनेंस करना है तो बहुत तकलीफ, इसीलिए साक्षात मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हेड है विष्णु खुद। तो ये मेंटेनेंस की जो शक्ति है, आराम से लेटे लेटे कर रहे हैं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। और जिस व्यक्ति को इस चीज पे जो श्रद्धा हो जाए कि इस ब्रह्मांड से परे भगवान है, भगवान एक अंततः एक व्यक्ति है और उनके अंदर अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, हम सोच नहीं सकते, कोई ऐसा चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकते, कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनके लिए नामुमकिन है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो उन्हें मालूम नहीं है। इस चीज की कण मात्रा में भी अगर जिसको श्रद्धा हो जाए वो भक्ति का योग्य अधिकारी है। और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद, सॉरी, वो श्रद्धा प्राप्त होने के बाद, आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, पर तृतीय कोटि, कृपा समझाते, तृतीय कोटि का भक्त मतलब जब तक भक्तों के संग में है सरलता से वो स्वीकार करता है, अरे सब लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं तो होगा, शायद होगा। पर अगर उनसे प्रश्न किया जाए, उनको कुछ अलग प्रकार का विरोध सिद्धांत कहा जाए तो उनका श्रद्धा जो है डगमगा जाता है। पर मध्यम अधिकारी, दूसरी कोटि का भक्त वो है, दूसरी श्रेणी का भक्त वो है जो शायद दूसरों को श्रद्धा नहीं दिला सकता पर उसकी श्रद्धा जो है विचलित नहीं होगी, ये दूसरी श्रेणी का भक्त है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रद्धालु भक्तों का संग करके उसकी श्रद्धा को उस स्थिति पर बढ़ाया है जहां अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ जहां हृदय में है वहां शंका आती है, क्या सचमुच में भगवान है। जब हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आती है तो थोड़े बहुत श्रद्धालु भक्ति हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर थोड़ा अगर जीवन में कुछ समस्या आ गई तो डगमगा जाते हैं और अंततः धीरे धीरे श्रद्धा ही उड़ जाता है उनका भगवान के ऊपर, बोले इतना करने के बाद भगवान ने ऐसा क्यों किया मुझे, श्रद्धा उड़ जाती है। पर मध्यम श्रेणी का भक्त वो है जो शास्त्र के आधार पर, भक्तों के संग में आकर, ज्ञान के आधार पर श्रद्धा को बनाए रखा है। और इसीलिए हालांकि वो हर प्रकार के लोगों को श्रद्धा दिला पाए या न पाए पर उसकी श्रद्धा जो है कम से कम निष्ठा में बदल गई, परिवर्तित हो गई। निष्ठा, निष्ठा मतलब हिलने वाला, श्रद्धा मतलब एक छोटा अंकुर, पेड़ का एक छोटा अंकुर, निष्ठा मतलब पेड़ हो गया, अभी हिला नहीं सकता। पर तृतीय प्रथम श्रेणी का भक्त वो है, उत्तम अधिकारी, जिसके संग मात्र से हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है और जिसके श्रवण करने से कोई भी व्यक्ति और किसी को भी वो कन्विंस करा के समझा सकता है कि भगवान है और श्रद्धा दिला सकता है। उसे तो कोई, उसकी श्रद्धा को तो दूर करने की दूर की बात, पर वो किसी को भी समझा सकता है और उनमें श्रद्धा प्रदान कर सकता है, वो प्रथम श्रेणी का भक्त है। तो ये सरल श्रद्धा कि भगवान है, भगवान अंततः एक व्यक्ति है पर वो उनके अंदर अचिंत्य शक्ति है और उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और ये श्रद्धा ज्ञान के ऊपर अगर आधारित हो तो वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है, वो बड़ा दुर्लभ है और वो व्यक्ति अंततः भगवान की, अपने जीवन की अंतिम जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, को वो प्राप्त कर सकता है। अंत में प्रभुपाद जी का एक प्रभुपाद जी इस तत्व को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा, इतनी सरल सुंदर कथा बताते हैं जिसके द्वारा ये छोटी सी बात हमें समझ में आ जाएगा। और ये श्रद्धा जो है ये ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस भक्ति लता का बीज, श्रद्धा का बीज भगवान की कृपा से और उनके प्रतिनिधियों की कृपा से ही ये बीज बोया जा सकता है। प्रभुपाद जी एक छोटे से उदाहरण देते हैं जिसके द्वारा मैं कथा समाप्त करना चाहता हूं। राजविद्या नाम का पुस्तक है, उसमें ये बताते हैं। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बार नारद मुनि जा रहे थे तो एक ब्राह्मण से उनका मुलाकात हुआ। तो ब्राह्मण ने नारद जी को पूछा, बड़ा वेदों का पाठ करता था, पूजा पाठ करता था, तो ब्राह्मण ने नारद मुनि से पूछा कि नारद जी आप कहां जा रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूं भगवान के दर्शन करने। बोले अच्छा, कृपया एक काम कीजिए, आप उनसे पूछिए कि मेरा कब उद्धार होगा, कब मैं उनके चरणों में चरणों को प्राप्त करूंगा, प्राप्त होऊंगा। नारद जी बोले ठीक है पूछूंगा। थोड़े दूर गए, वहां एक मोची था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसने आसन दिया, बोला महाराज आप चप्पल तो नहीं पहनते, नहीं तो फिर मैं सी देता आपका। बोलिए कहां जा रहे हैं आप। बोले वैकुंठ जा रहा हूं। बोले रियली, बहुत अच्छी बात है, कृपया आप मेरा प्रणाम प्रभु नारायण बता देना और उनसे प्रार्थना करना कि कभी ना कभी मेरा कोई कुछ मेरे पर कृपा हो जाए और मेरा उद्धार हो जाए, कुछ हो जाएगा, पूछ के पूछना कब कुछ मतलब क्या संभावना है या नहीं मेरा भगवत धाम जाना। नारद मुनि बोले ठीक है पूछ लूंगा। नारद मुनि गए विष्णु के पास, विष्णु ने जान लिया उनके हृदय की बात और जैसे आए तुरंत कह दिया नारद मुझे मालूम है तुम क्या पूछना चाहते हो, उसका उत्तर सुनो। ये ब्राह्मण जो है उसको मेरे धाम आने के लिए करोड़ों जन्म लग जाएंगे और जो वो मोची है वो इसी जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करेगा। नारद बोले बोले वो हां ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसे कैसे। तो नारद मुनि विष्णु ने कहा तुम समझ जाओगे, तुम जब वापस जाओगे तो वो अगर पूछेंगे कि हमारे विष्णु क्या कर रहे थे तो तुम उन्हें कहना कि विष्णु एक हाथ में सुई रखे हुए थे और सुई का जो आंख है उसमें से एक हाथी को घुसा रहे थे। क्या बोले तुम कहना, बस तुम समझ जाओगे कि क्यों इस ब्राह्मण को करोड़ जन्म लगेंगे और क्यों इस मोची को इसी जन्म के अंत में आएगा। ठीक है प्रभु आपकी महिमा बड़ा अपार है, ठीक है जाएंगे। नारायण नारायण आ गए नीचे। सबसे पहले ब्राह्मण मिला, बोले नारद जी क्या समाचार, गए थे वैकुंठ। बोला हां हां गया था, बताइए कब मेरा उद्धार होगा। बोले बात यह है वत्स, तुम्हारा उद्धार कम से कम करोड़ों जन्मों के बाद होगा। क्या करोड़ों जन्म, आप शायद गए ही नहीं, आप शायद गए नहीं हैं, मुझे तो शंका हो रही है आप नारद हैं कि नहीं, कोई ड्रामा कंपनी के आदमी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना मैं पूजा पाठ करता हूं, इतना भक्ति करता हूं, करोड़ों जन्म। नारद मुनि बोले अभी समझ गया, अभी मैं समझ गया क्यों नहीं जाएगा। फिर चलते गए वो उसके पास मोची के पास, तुरंत उसने एक पत्थर था बैठाया, बोला आसन ग्रहण कीजिए। बोले प्रभु बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है कि आप दूसरी बार दर्शन दे, आप जैसे महात्माओं का तो एक बार भी दर्शन होना मुश्किल है, दूसरी बार मिल गया, बहुत धन्यवाद, कृपया आप बताइए मेरे नारायण क्या क्या कर रहे थे, क्या उनकी लीला है, क्या उन्हें कहा, क्या उन्होंने कुछ उनके बारे में कुछ तो कहिए। तो कहने लगे कि मैं गया था और मैंने पूछा तुम्हारे बारे में। अच्छा, मुझे इसमें याद करते हैं, बताइए क्या बताए। बोले इसी जन्म के अंत में तुम चले जाओगे वापस। क्या हो नहीं सकता, मैं तो इतना तुच्छ हूं, मैं इतना गया गुजरा आदमी हूं, मुझे इस जन्म के अंत में मुझे तो करोड़ों जन्म लगेंगे, मैं नहीं जा सकता इतना जल्दी। ये उनकी महिमा है, उनकी कृपा हो तो ठीक है, पर मेरे में कोई योग्यता नहीं। और बताइए और बताइए, वो क्या कह रहे थे, क्या पहने हुए थे, क्या कर रहे थे, कुछ तो और बताइए। बोले बताऊं क्या कर रहे थे वो, हां बताइए। बोले एक सुई हाथ में लिए हुए थे और सुई के आंखों से हाथी को घुसा रहे थे। हां ये भूल गया एक्चुअली। वो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण से पूछते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं फ्लैशबैक, वापस जाइए थोड़ा रिवाइंड कीजिए अपना कैसेट को। ब्राह्मण तो डाउट करने लगता है, ठीक है आप सही में कहते हो भाई, कौन कहते हो? बोला सही में गया था भाई। बोले बताओ क्या कर रहे थे हमारे। बोले सुई में से हाथी घुसा रहे थे। बोले अभी तो कंफर्मेशन हो गया कि आप नहीं गए थे, भला कोई सुई के आंखों से हाथी घुसाता है क्या? हमारे नारायण को ऐसे मूर्ख समझे हो, हमको एक सुई में एक धागा घुसाने में तकलीफ होता है तो रस्सी घुसाना कौन करेगा, हमारे नारायण के इतने मूर्ख हैं ये सब करेंगे? बोले ये सब ठीक नहीं है, निकलो निकलो, अभी कंफर्मेशन हो गया, न वैकुंठ है न नारायण है न तुम हो, चलो निकलो यहां से। पर जब ये पूछा तो उसको कहे कि सुनो क्या कर रहे थे। बोले सुई के आंख से हाथी घुसा रहे। तो जब ये मोची सुना उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह गई। वाह प्रभु वाह, क्या आपकी महिमा है। बोले क्या आपकी महिमा है, सुनो मैं क्या बोला। अरे सुई के आंख से हाथी घुसा रहे थे। बोले हां या कितनी सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले क्या तुम्हें विश्वास है, मूर्ख कभी सुई की आंखों से कोई हाथी घुसा सकता है? तो कहने लगे क्यों नहीं, मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते, मेरे प्रभु के लिए कौन सी चीज नामुमकिन है। अरे नारद मुनि आपको मैं एक बात बताऊं, क्यों मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। मैं छोटे बचपन से इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, मैं भी वही काम कर रहा हूं। इस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठता हूं और हर रोज हजारों फल वट वृक्ष के नीचे गिरते हैं और हर एक फल में हजारों बीज होते हैं, हर एक बीज के अंदर मेरे प्रभु ने एक एक वट वृक्ष को घुसा के रखा हुआ है। एक फल के अंदर हजार बीज हैं और हजार बीजों को डालो तो उसमें से एक एक वट वृक्ष निकलने वाला है और उस वट वृक्ष में से हजारों फल निकलेंगे जिसमें हजारों हजारों बीज होंगे और हर एक बीज में पहले से ही एडवांस बुकिंग में उन्होंने वट वृक्ष को डाल के रखा है। जिस वृक्ष में से हजारों फल निकलेंगे और हर एक हजारों फल के हजारों बीज में एक एक वट वृक्ष बना के रखा है, ये मेरे प्रभु की अचिंत शक्ति है। तो जिस एक फल के अंदर हजारों बीज और हर एक बीज में वट वृक्ष को एडवांस में डाल के रखने वाले, क्या एक सुई के नोक से हाथी निकालना क्या तकलीफ होगी। नारद मुनि मन ही मन उनको दंडवत प्रणाम किए, बोले अब मैं समझ गया कि क्यों इसी जीवन के अंत में तुम भगवत धाम जाओगे, क्योंकि तुम भगवान की अचिंत्य शक्ति में श्रद्धा रखते हो और ये श्रद्धा तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट है, तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेमा कुमार्थो महान, इतना प्रेम है भगवान के प्रति कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे प्रभु के, तुम्हें विश्वास है कि भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए अब मैं समझ सकता हूं कि क्यों नारायण ने मुझे यह कहने को कहा, अब मुझे पूर्ण विश्वास है, यह श्रद्धा है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति का मतलब आदौ श्रद्धा, और उस श्रद्धा का बाहरी स्वरूप क्या है? बाहरी स्वरूप है भगवान के आज्ञा का शरणागत होना। जिसे श्रद्धा है वो किसी स्थिति में, जीवन की हर एक स्थिति में उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, निष्ठा डगमगाती नहीं है और भगवान को शरणागत रहता है वो। ये सबूत है हमारे श्रद्धा का, हमारे विश्वास का, हमारे निष्ठा का। निश्चित हमारे हृदय में भले थोड़े बहुत संशय आए, हो सकता है कभी कभी संशय आता है कि क्या सचमुच में भगवान है, ऐसा क्यों हो गया हमारे जीवन में, ऐसा क्या हुआ, तो ये क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ है। पर अगर भक्तों के संग में रहकर भगवान के कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को उनकी सेवा में लगाएंगे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति एक ऐसी अग्नि है जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जो अनर्थ के रूप में हमारे हृदय में संचित है उसको जलाकर राख कर देगी और हमारी श्रद्धा को बढ़ाकर निष्ठा भाव और अंततः श्रद्धा का जो आज बीज है वो अंततः प्रेम का फल में परिपक्व होकर भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेगा, वो जीवन की परिपूर्णता है। तो इस तरह से श्रद्धा अगर उत्पन्न करना है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रद्धा केवल भक्तों के संग में आ सकता है, भक्तों के संग से ही श्रद्धा उपलब्ध होता है और भक्ति करने से इस श्रद्धा के बीज को धीरे धीरे अंकुरित करके धीरे धीरे उसको सुरक्षित रखकर भक्तों के संग और सिंचन करना मतलब हरिनाम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़कर पेड़ के रूप में आ जाएगा, निष्ठा के पेड़ के रूप में, और तब उस पेड़ में से भाव और प्रेम की फल जो है उत्पन्न होंगे जो भगवान के चरण कमलों में हमें स्थित कर देंगे। और एक बार उस स्तर पर आ गए तो वहां से डगमगाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से भगवान कहते हैं इस राज विद्या को प्राप्त करना है और इस गुही ज्ञान को प्राप्त करना है तो इसका एकमात्र योग्यता है श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक उत्सुकता से, तीव्रता से, सही व्यक्तियों से श्रवण करना। जब श्रवण करते रहेंगे तो ये श्रद्धा अंततः परिपक्व होकर प्रेम का फल उत्पन्न होगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रणाम। हरे कृष्ण।